उसके अब्बा के पास जितना था उतना शायद उन लोगों के पास भी नहीं था जिनके घर में आज वो मालिक बनकर बैठे थे। फैज़ान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, वैसे आप भी घर से दूर हैं, अगर पैसे पास हों तो संभाल कर रखना चाहिए। वो उसे समझाने लगा था क्योंकि वो जानता था ये लड़की बहुत लापरवाह है। कोई बात नहीं, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो ताई अम्मी हैं, रेहान भाई हैं, मैं उनसे मांग लूँगी। फैज़ान के चेहरे पर हल्के से उदासी आई। अम्मी अब्बू तो नहीं है ना, उसने धीमे से कहा, फिर थोड़ा रुक कर बोला, मगर आप घर से दूर हैं, आपको ध्यान से रहना चाहिए, दुनिया पर इतना जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए। बात करते हुए उसने पैकेट से एक टी शर्ट निकाल ली। उसी वक्त नूर जिस किताब को उलट पलट कर देख रही थी उसमें से एक तस्वीर फिसल कर नीचे गिर गई। नूर ने तस्वीर उठाई, उसमें माहिला और अरमान के साथ एक छोटा सा लड़का भी था, तीनों बहुत छोटे थे। अरे ये तो माहिरा और अरमान के साथ आपकी तस्वीर है, नूर ने हैरानी से कहा। फैज़ान ने तुरंत आगे बढ़कर तस्वीर और किताब उसके हाथ से ले ली। फिर उसने गंभीर होकर कहा, मैं आपसे एक बात कहता हूँ नूर बीवी। नूर ने उसकी तरफ देखा। फैज़ान बोला, आप यहाँ पढ़ने आई हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपनी ज़िंदगी बनाइए, किसी के साथ रिश्ते मत बनाइए, दूर रहिए सबसे, चाहे माहिरा हो, सादिया हो या अरमान। वो उसे समझा रहा था क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था ये लड़की दुनियादारी के मामले में बिल्कुल कच्ची है। नूर की भौहें से उड़ गईं। और क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का, उसके लहजे में गुस्सा आ गया था। फैज़ान ने शांत आवाज में कहा, मतलब सभी के चेहरे पर नकाब है, आप अभी छोटी हैं, आपको समझ नहीं आएगा। नूर का गुस्सा और बढ़ गया। नहीं नहीं, तुम एहसान फरामोश हो, वो तेज़ आवाज में बोली। जिनके घर में काम करते हो वही लोग तुम्हें इतना प्यार करते हैं, इतना यकीन करते हैं, और तुम उनके बारे में ऐसा सोचते हो। नूर की बात सुनकर फैज़ान सच में हैरान रह गया। नूर अभी भी गुस्से में बोल रही थी, मुझे पता है लोग नौकरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, मगर यहाँ सब तुम्हारे साथ कितना अच्छा पेश आते हैं। सादिया भाभी तुम्हारे साथ कितनी अच्छी हैं, रेहान भाई, फैज़ान ने धीरे से कहा। वो मेरी बड़ी बहन है, नूर एकदम रुक गई। क्या, वो सच में हैरान हो गई थी। सादिया भाभी आपकी बड़ी बहन है? नूर को अभी अभी पता चला था कि फैज़ान कोई अरमान के घर का नौकर नहीं है, बल्कि वो सादिया का भाई और माहिरा का शौहर है। वो पूरे रास्ते यही सोचती हुई घर लौटी, उसके दिमाग में सवाल ही सवाल घूम रहे थे। जब वो घर में दाखिल हुई तो शाम का वक्त था, हॉल में सभी बैठे हुए थे, रेहान, सादिया और रेहाना बेगम। नूर के चेहरे की परेशानी देखते ही रेहाना बेगम ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नूर थोड़ी झेप गई, उसे अपनी ही बेवकूफ़ी पर हंसी भी आ रही थी। मुझे फैज़ान के बारे में पता नहीं था, मुझे लगा वो कोई नौकर है, लेकिन अभी पता चला कि वो सादिया भाभी के भाई हैं, वो थोड़ा सा कुचाते हुए बोली। रेहाना बेगम हल्के से मुस्कुराईं। अगर तुम्हें नहीं पता था तो पूछ लेती बेटा, नूर ने तुरंत मुंह बनाकर कहा। मगर इसमें मेरी भी क्या गलती है, वो जैसे रहते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल करीम भाई जैसे लगते हैं। करीम उनका ड्राइवर था। आप उनसे कहिए ना कि थोड़ा अच्छे से रहा करें, और वो नौकरों के कमरों में क्यों रहते हैं? नूर के चेहरे पर सच्ची कन्फ्यूजन थी, उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। सादिया ने ये सब सुना तो उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसे अच्छा नहीं लगा कि नूर उनकी निजी बातों में दखल दे रही है। उसने हल्के लेकिन ठंडे लहजे में कहा, उसे समझाने के लिए उसकी बीवी काफ़ी है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बात सीधी नहीं थी मगर मतलब साफ था, इस मामले से दूर रहो, नूर ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा। मगर वो तो वैसे भी उसे मुंह नहीं लगाती, रेहाना बेगम ने तुरंत टोक दिया। बेटा तमीज़ से बात किया करते हैं, बड़े लोगों के बारे में ऐसे नहीं बोलते। वो बात को वहीं ख़त्म करना चाहती थी। नूर ने तुरंत सिर झुका दिया। आई एम सॉरी मॉम, तभी रेहान बोल पड़ा। मॉम इसमें इसका क्या कसूर है, इसे सच में पता नहीं था। सादिया ने एक पल के लिए रेहान की तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की सी चुभन थी। रेहान नूर की तरफदारी कर रहा था, ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो बिना कुछ कहे उठी और वहां से चली गई। रेहाना बेगम ने जाते हुए उसे देखा और फिर रेहान से बोली, जाकर मनाओ उसे, कितने दिनों से वो आज की एनिवर्सरी की तैयारी कर रही है। रेहान जैसे अचानक चौंक गया, एनिवर्सरी, वो तो ये बात लगभग भूल ही गया था, रेहाना बेगम ने गुस्से से कहा। क्या हो गया है तुम्हें रेहान, तुम पहले ऐसे नहीं थे, इतना कहकर वो भी वहां से उठकर चली गई। अब हॉल में सिर्फ नूर और रेहान रह गए थे। नूर ने धीमे से कहा, मेरी वजह से आपको डांट पड़ गई, सादिया भाभी भी आपसे नाराज हो गई, गलती मेरी है। रेहान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम फिक्र मत करो। फिर उसने नरमी से कहा, जाओ कमरे में जाकर आराम करो। नूर सिर हिलाकर वहां से चली गई। नूर के जाने के बाद हॉल में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। रेहान सोफे पर बैठा हुआ था मगर उसका ध्यान कहीं और था। न जाने क्यों उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा आ रहा था, नूर का मुंह बनाना, बात करते वक्त उसकी बेपरवाह आवाज़, और फिर अचानक मासूमियत से आई एम सॉरी कहना। रेहान ने हल्का सा भौंही से कोड़ ली उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई लड़की उसके दिमाग में इस तरह जगह बना रही है। वो ऐसा आदमी नहीं था जो किसी के बारे में इस तरह सोचे। उसने हल्की सी हंसी दबाई। अजीब लड़की है, उसने मन ही मन कहा। मगर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अलग सा भाव आया। शायद किसी ने बिना डरे उससे इस तरह बात की थी, और यही बात उसे बेचैन भी कर रही थी और अजीब तरीके से दिलचस्प भी लग रही थी। रेहान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ एक जिज्ञासा है या। उधर नूर के जाने के बाद फैजान घर का सामान लेने के लिए शाम की मार्केट चला गया था। कुछ देर बाद वो कई थैले उठाए वापस लौटा। रसोई में आते ही उसने थैले काउंटर पर रखे और शांत आवाज में कहा, सामान है, मैं फ्रिज में रख देता हूँ। तभी पीछे से जुबैदा बेगम की आवाज आई। तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारा क्या रिश्ता है, वो तुम्हें नौकर समझती रही। नूर की बात अब पूरे घर में फैल चुकी थी। जुबैदा बेगम की बात सुनकर फैजान ने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। रिश्ते बताता कौन है चाची जान, उसने धीमी आवाज में कहा। वो तो खुद ही दिखाई दे जाते हैं, उसकी आवाज में हल्का सा दर्द छुपा हुआ था, क्योंकि नूर ने जो देखा था वही समझ लिया था। तभी माहिरा भी किचन में आ गई। उसके चेहरे पर पहले से ही गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सच तो यही है, वो ताना मारते हुए बोली। फकीरों जैसी शक्ल तो भगवान ने दी है तुम्हें, कपड़े भी वैसे ही पहनते हो। फैजान चुपचाप सब्जियां फ्रिज में रखने लगा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। माहिरा का गुस्सा और बढ़ गया। अगर मुझे इस दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा नफरत है ना, तो वो तुम हो। किचन में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फैजान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस आखिरी सब्जी फ्रिज में रखी और चुपचाप थैले समेटने लगा। माहिरा तिलमिला उठी। हर बात पर खामोश हो जाते हो, पता नहीं क्यों तुम ही मेरी किस्मत में लिखे थे। उसकी आवाज गुस्से और बेबसी दोनों से भरी हुई थी। लेकिन फैजान फिर भी कुछ नहीं बोला। वो बस एक पल के लिए रुका, फिर बिना कुछ कहे रसोई से बाहर चला गया। पीछे किचन में खड़ी माहिरा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। अयान ने अरहान की मौत के पीछे की हर सच्चाई पता कर ली थी। अयान ने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की थी। वो जानता था कि इस खेल में एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी, इसलिए उसने हर चीज का पता धीरे धीरे और बहुत सोच समझ कर लगाया।
वो कई दिनों से चुप था। बाहर से ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन हकीकत ये थी कि वो हर दिन हर पल सबूत इकट्ठा कर रहा था।